पर्प्लेक्स माउथ फक स्टोरी में मेरे पापा के दोस्त ने मुझे नंगी देखा तो चूदने की लालसा उनके मन में भी लगी। दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा कि मेरी जवानी खिल चुकी थी और मुझे लड़ने की ज़रूरत थी। पापा के दोस्त हमारे घर में रहने आए थे। अब कहानी आगे हाजिर है। जल्दी अंकल का हाथ मेरी गर्दन से नीचे सरकने लगा और मेरे सीने के ऊपर चलने लगा। मुझसे बेहद कंट्रोल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप बैठी रही। उसके बाद उन्होंने मुझे झुका दिया, मेरी पीठ को हल्के हल्के दबाने लगे, फिर पूछने लगे कि अब आराम है, फिर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर से उनको याद करते हुए उंगली की। मुझे लगता था मानो अंकल के अंदर भी मेरे प्रति कुछ ना कुछ आ गया है। मैं इतना समझ तो गई थी कि जब से अंकल ने मुझे बिना कपड़ों के देखा उनका नज़रिया बदल गया है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे। शायद पापा का डर था या कुछ और। फिर मैंने सोचा कि चलो अंकल को आजमाती हूँ। उस दिन दोपहर को ही मैंने सर दर्द का बहाना बनाकर मम्मी से दवाई मंगवाने को कहा। घर पर पापा और भाई तो थे नहीं, मम्मी ने अंकल को बोल दिया। थोड़ी देर में अंकल दवाई ले आए और दवाई खाकर मैं कमरे में सोने चली गई। मैंने सोचा कि अगर अंकल के मन में कुछ होगा तो उस दिन की तरह मालिश करने के लिए आएंगे। काफ़ी देर तक मैं लेटी रही, लेकिन वो आए नहीं, लेकिन मेरी नींद लग गई। शाम को जब मैं सोकर उठी तब भी अंकल ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं सोचने लगी कि मेरा वहम ही था। फिर सभी ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। रात के 11 बजे अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और अंकल मेरे कमरे में दाखिल हुए। आते ही पूछे, अब सर का दर्द कैसा है तुम्हारा? मैंने कहा कुछ आराम है। बोले, कहो तो मालिश कर दूँ उस दिन की तरह? मैंने कहा कर दीजिए। अंकल ने आज दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मैं समझ गई थी कि इनके मन में कुछ तो चल रहा है। इसके बाद वो मेरे पास आए, बिस्तर पर बैठ गए, मेरा सर दबाने लगे। कुछ देर बाद बोले, ऐसे में अच्छे से हो नहीं रहा है, तुम उठकर बैठ जाओ। मैं बैठ गई। उन्होंने मेरे बालों को खोला और हल्के हाथों से मालिश करने लगे। पहले तो अंकल काफ़ी देर तक सर को दबाते रहे और फिर अपने हाथों को गले तक ले जाने लगे और पीठ को हल्के हल्के मालिश करने लगे। मैंने गौर किया कि आज अंकल का हाथ गले से कुछ ज़्यादा ही नीचे तक जा रहा है, लेकिन मेरे दूध तक नहीं जा रहा है। मैंने सोच लिया था कि आज अंकल कुछ भी नहीं करेंगे। अंकल लगातार मेरी पीठ और गर्दन पर सिर्फ मालिश कर रहे थे। पहली बार उनकी उंगली मेरे कुर्ते के अंदर जाकर मेरे दूध को हल्के से छुई। मेरे बदन में करंट दौड़ गया। अब तो अंकल की उंगलियां इंच इंच करते हुए हर बार कुछ ज़्यादा ही अंदर जाने लगे। उस वक्त अंकल के हाथ पूरे तरीके से पांपने लगे, मगर अंकल को मेरी इजाज़त की ज़रूरत थी अब, और मेरी तरफ से उन्हें पूरी छूट थी। अब हम दोनों के बीच संकोच की दीवार टूटना बाकी था। मेरे मन में क्या था ये अंकल को पता नहीं था, और अंकल को इस बात का संकोच था कि कहीं मैं गुस्से में आकर किसी को कुछ ना बता दूँ। धीरे धीरे अंकल की उंगलियाँ मेरे कुर्ते के ज़्यादा ही अंदर तक जाने लगी और अब उनकी उंगलियाँ मेरे दोनों के दूध के बीच की लाइन तक पहुँचने लगी। अब अंकल का हाथ मेरे सर से पूरी तरह से हट चुका था। अब वो केवल गर्दन से लेकर मेरे सीने पर ही उंगलियां चला रहे थे। उनकी गरम गरम सांस मेरे गालों पर लगने लगी थी। मेरी सांसें भी अब तेज़ी से चलने लगी थी। अब तक अंकल को इतना विश्वास हो गया था कि मेरी तरफ से लाइन साफ है। धीरे धीरे उन्होंने कुर्ते के ऊपर से मेरे दोनों दूधों को जकड़ लिया। बस मेरा इतना ही कहना था कि हम दोनों के बीच दीवार टूट गई और मैं उनके सीने से चिपक गई। अंकल मेरे गालों को चूमने लगे। मैंने विरोध किया और कहा, अंकल नहीं नहीं अंकल मत करिए ये सब। लेकिन मेरे दिखावटी विरोध ने कुछ काम नहीं किया। थोड़ा विरोध देखने के बाद मैं पूरी तरीके से उनका साथ देने लगी। अंकल मेरे होठों को चूमने लगे और मैं भी। जल्दी अंकल का हाथ मेरे सीने पर गया और अंकल कमीज के ऊपर से मेरे तने हुए दूध को दबाने लगे। जल्दी अंकल ने अपना हाथ नीचे किया और मेरे कुर्ते को ऊपर उठाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, पहले लाइट बंद कर दीजिए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा छा गया। एक झटके में अंकल ने मेरी कुर्ते को बाहर निकाला और मेरी ब्रा निकाल फेंकी। धीरे धीरे उन्होंने मेरे दूधों को दबाना और चूसना शुरू कर दिया और कहा कि आवाज़ मत करना। इसके बाद अंकल ने मेरी सलवार भी निकाल दी, मेरी बनियान और पैंट निकाल दी और केवल चट्टी में रह गए वो। मेरी चोट ने जमकर पानी छोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी अंकल मुझे चूमते हुए मेरी पेंटी तक जा पहुँचे और वो निकाल फेंकी। पहले उन्होंने मेरे जूत को हाथों से छुआ, फिर अपना मुंह उसमें लगा दिया। मैं किसी तरीके से अपने आप को रोक रही थी कि मुंह से आवाज़ न निकले और पूरे तरीके से बिस्तर पर मचल रही थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। अंकल बिना रुके मेरे जूत को चाट रहे थे और मैं बिस्तर पर इधर उधर मचल रही थी। ये सब काफ़ी देर तक चला और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और झड़ गई। मैं निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गई। इसके बाद अंकल नहीं रुके और मुझे दोबारा गर्म करने की फिर से कोशिश करने लगे। अब अंकल ने अपनी चट्टी भी निकाल दी और जल्दी से मेरे ऊपर आकर मेरे होठों को फिर से चूमने लगे, मेरी दोनों जांघों को फैलाया। पहली बार मुझे उनके लण का अनुभव हुआ। उनके लण का आकार काफ़ी मोटा लग रहा था और वो लगातार मेरे मुँह से आवाज़ ना निकले इसलिए मेरे होठों को भी चूम रहे थे। फिर अंकल ने छेद पर लण लगाया और मुझे जोर से जकड़ लिया। काफ़ी प्रयास के बाद भी उनका लण चूत में न जा सका क्योंकि मेरी चूत उनके लण के हिसाब से छोटी ही थी। धीरे धीरे उन्होंने खिसाना शुरू किया और एक बार थोड़ा ही अंदर गया कि मैं जोर से उछल पड़ी। अंकल ने कहा कि लगता है तुम्हारे साथ सब कुछ अभी करना ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद अंकल ने मेरी दोनों जांघों को सटा लिया और अपने लण को जांघ के बीच फंसाकर आगे पीछे करने लगे। काफ़ी देर ये किया और फिर अपना लंड मेरे हाथों में थमा कर बोले, इसे हिलाओ। मैंने पहली बार किसी लंड को अपने हाथों में पकड़ा था। उस वक्त मैं सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ कि अंकल ने ये लंड मेरे जूत में नहीं डाला, वरना पता नहीं मेरी क्या हालत होती। इसके बाद मैंने उनके लंड को आगे पीछे करते हुए हिलाया। जल्दी अंकल के लंड ने पिचकारी छोड़ दी। मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था लेकिन अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसे हिलाती रही और उनका वीर्य चारों तरफ मेरे बेड पर फैल गया। अंकल मैं और वैसे नंगे बदन चिपकर काफ़ी देर तक लेटे और सुबह करीब 4 बजे कपड़े पहनकर चले गए। इसके बाद तो मैं और अंकल आए दिन मिलने लगे लेकिन अंकल ने अभी तक मेरी जुदाई नहीं की। दोस्तों अगले भाग में आप लोग पढ़िए कि किस तरह से मुझे और अंकल को मौका मिला और मेरी पहली जुदाई हुई।